الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ آل عمران تیسری سورت، اور نزول کی ترتیب میں سورہ آل عمران نواسویں سورت، اور اس سورت کے جو نازل ہونے کے سبب اور اس سورت کے نازل ہونے کے جو حالات ہیں، گزشتہ مجلس میں تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی تھی، اور وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے جزیرۃ العرب کے جتنے بھی قبیلے تھے، جتنے بھی حکومتیں تھیں، جتنے بھی سرداران تھے، یہاں تک کہ جو بادشاہان، ملوک و سلاطین تھے، سب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بھیج دیے تھے، اور انہی خطوط میں سے ایک خط نجران کے نصرانیوں کو بھی بھیج دیا تھا. نجران کی بستی آبادی کے لحاظ سے کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی نہیں تھی، لیکن نجران میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ نصرانی تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اور ان کو علم حاصل کرنے کا شوق بھی تھا، اور کچھ نہ کچھ اس بارے میں علم ان کے پاس موجود بھی تھا. اور نجران کے حکمران کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موصول ہو گیا، تو اس نے اپنی رعایا میں سے 70 آدمی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کیسے ہیں، اور ان سے اعتراضات کرنے کے لیے، ان سے مناظرہ کرنے کے لیے 70 آدمیوں کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم उन 70 आदमियों में से 14 आदमियों से इल्मी मुबाहसा कर रहे थे, मुनाजरा कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत से और दलाइल से उन पर यह बात वाज़ह कर दी थी कि तसलीस का अकीदा यानी नसरानी अल्लाह जिब्राइल और हजरत ईसा को मिलाकर खुदा कहते हैं, यह अकीदा गलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अहदियत, अल्लाह की वहदानियत, इसके बारे में दलाइल पेश कर दिए थे कि असल माबूद के लायक खुदा ताला की जात एक है और उसके साथ कोई किसी मर्तबे में भी शरीक नहीं है। और इसी मुबाहसे के दौरान में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हजरत जिब्राइल अमीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेआनत और बजरिया वही से आपकी मदद करने के लिए भेज दिया था। तो हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सूरह आल इमरान की जो 87 आयतें हैं इब्तदाई, ये आयतें नजरान के वफ्त के जो एतराजात थे और जो वो सवालात लेकर आए थे, अल्लाह ताला ने ये सूरह आल इमरान की 87 आयतें उनके जवाबात में नाजिल कर दी है। और आज जो आयतें हम तफसीर कर रहे हैं, इस आयत का जो नुजूल का सबब है वो भी यही है कि नसरानियों में एक अजीब आदत थी कि वो इंजील के अंदर जो वाज़े हुक्म थे, वाज़े मसाइल थे, वाज़े बातें थी, उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। और इंजील चूंकि अल्लाह की किताब थी, आसमान से नाजिल हुई हुई किताब थी, तो जैसे कुरान करीम के अंदर मुतशाबहात मौजूद हैं, इसी तरह इंजील के अंदर भी मुतशाबहात मौजूद थी। और गुज़िश्ता मजलिस में इशारा कर दिया था कि नसरानी कहते थे कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह कहा है, कलिमतुल्लाह कहा है, और ये दलील है इस बात पर के हजरत ईसा अल्लाह के बेटे। तो कुरान करीम ने उनके इस अमल ये जवाब दिया है कि आपने इंजील की मुतशाबहात को लेकर उसके पीछे पड़ गए हैं और इंजील के अंदर एक अल्लाह की इबादत की तबलीग मौजूद थी, उस पर आप अमल करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उन लोगों की मजम्मत की है जो मुतशाबहात पर चलते हैं और मुतशाबहात की तलब में लगे रहते हैं और मुतशाबहात के मतलब जानने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि मुहकमात और वाज़े मसाइल मानते नहीं हैं। इस आयत के बयान करने से पहले एक अहम वाक़े का बयान करना जरूरी है। कहते हैं कि अंग्रेज ने जब बर्रे सगीर पर कब्जा किया और यहां पे अपनी हुकूमत कायम की, तो अंग्रेज ने यह बात महसूस की कि मुसलमानों के अंदर दीनी रुझान ज्यादा है اور بر صغیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہی موجود تھی جیسے آج بھی موجود ہے، اور مسلمان نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، اللہ و رسول کے احکام کی تعمیل بھی کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے مذہبی تعلیمات میں سے ایک بہت ہی اہم تعلیم وہ جہاد ہے، وہ لڑائی ہے، اور اپنے حق اور اپنے حفاظت اور دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں جو جذبہ ڈال دیا ہے، جو غیرت ایمانی ڈال دی ہے، وہ انگریز کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کا سبب بن رہی تھی۔ تو جیسا کہ انگریز نے ہمیشہ شرارت کی ہے، تو 1861 میں انگریز نے اپنی ایک چرچ میں سے ایک بندے کو وہاں پہ تعینات کر دیا تھا، اور اس کے پاس ہر قسم کی ڈگری موجود تھی، ہر قسم کی تعلیم موجود تھی، اور وہ اپنے آپ کو مذاہب کا ماہر کہتا تھا، اور مذہبی تعلیمات اس کو حرف بحرف معلوم تھی، اور اس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کی عظمت اور اسلام کی سربلندی کو ختم کرنا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جس شخص کو انگریز نے ہندوستان میں مذہبی اصلاحات کے لیے تعینات کر دیا تھا، تاریخ میں فاؤنڈر کے نام سے وہ مشہور ہے، اور اس نے اسلام کو بھی چیلنج کیا، اس نے ہندو مذہب کو بھی چیلنج کیا، اس نے بدھسٹ کو بھی چیلنج کیا، اس نے سکھوں کو بھی چیلنج کیا، اس نے پارسیوں کو بھی چیلنج کیا، اس خطے میں جتنے بھی مذاہب موجود تھے وہ سارے کے سارے مذاہب کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ جگہ جگہ پہ تقریریں کرتا تھا، مناظرے کرتا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ سارے دین غلط ہیں۔ اور فاؤنڈر کی علم کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ تاریخ میں ہے کہ فاؤنڈر نے صرف سورہ فاتحہ کے اوپر 3000 اعتراضات کیے تھے، اور 3000 سوالات کے ذریعے سے اس نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے وہی غلط ہے، اور اس زمانے میں مختلف بڑے بڑے شہروں میں میلہ لگتا تھا، اور اس میلے کو میلہ خدا شناسی کا نام دیتے تھے، جیسے کہ حکمرانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے معصوم عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے عجیب عجیب اسکیمیں نکالتے ہیں، عجیب عجیب نام دیتے ہیں۔ تو انگریز نے جو مذہبی میلہ مختلف شہروں میں رکھ دیا تھا، اس کا نام رکھ دیا تھا کہ یہ میلہ خدا شناسی ہے، یعنی اللہ کو پہچاننے کی مجلس وہ یہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ہندوستان میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تو علماء دیوبند بھی اس صورتحال کے بارے میں بخوبی جانتے بھی تھے اور اس کو دیکھ بھی رہے تھے، और उलमाए देवबंद के एक बहुत बड़े शेख और एक बहुत बड़े पीर तरीकत हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। उनको जब ये बात पता लगी कि अंग्रेज ने एक ऐसा प्रीस्ट या पादरी भेज दिया है कि जो बाकायदा शहर शहर बस्ती बस्ती में जाता है, मेला कायम करता है और उस मेले में वो मजाहिब को चैलेंज करता है और इस्लाम को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर किसी में दलाइल की बहस करने की तौफीक मौजूद है तो वो आए और मेरे साथ बहस करे। हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह के एक शागिर्द और खलीफा थे जिनका नाम, कम से कम उनका नाम आप हजरात को याद होना जरूरी है, हजरत मौलाना रहमतुल्ला किरानवी उनका नाम था और बहुत ही ज्यादा जहीन और फतीन आलिम थे। शेख ने हजरत मौलाना रहमतुल्ला किरानवी से कहा कि आपने इस फाउंडर का जवाब देना है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान बचाना है और हर तरीके से इसका रद्द करना है। और हजरत मौलाना रहमतुल्ला किरानवी रहमतुल्ला अलैह ने शेख की बात मानी और उसके जवाब देने के लिए और उसके रद्द करने के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की और बिल आखिर इलाहाबाद, एक शहर है इलाहाबाद में, जब मेला कायम होने लगा तो वहां पे फाउंडर ने तकरीर की और उसने कहा हल मिन मुबारिजिन युबारिजुनी, है कोई जवाब देने वाला जो मुझे जवाब दे। यहां से हजरत मौलाना रहमतुल्ला किरानवी उठे और उन्होंने फाउंडर से कहा कि मैं तुम्हारी हर चीज का जवाब देने के लिए मौजूद हूं। और फिर वो मशहूर तारीखी मजलिस थी, मुसलमानों के हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और हजरत मौलाना रहमतुल्ला किरानवी ने फाउंडर पे ऐसा बलीग रद्द किया कि सूरह फातिहा के 3000 एतराजात के जवाब में हजरत ने कहा कि तुमको अरबी आती ही नहीं है और तुम अल्लाह और रसूल से वाकिफ ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर दीन की रूहानियत और दीन की मारिफत की रत्ती भी मौजूद नहीं है और दीनियात को समझने के लिए एक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह की इताअत का जज्बा और हक की तलाश की तलब होना जरूरी है। और वहां पे फाउंडर ने जब ये बात देखी कि ये तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर रहा है और मुसलमानों के जो मुनाजिर हैं वो गालिब आ रहे हैं, तो उसने उस मजलिस को बात घुमा फिरा के खत्म कर दिया और अंग्रेज को ये खबर दे दी कि एक ऐसे मौलवी साहब आ चुके हैं कि उस मौलवी साहब का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अंग्रेज ने जब अपनी स्कीम फ्लॉप होते हुए देखी और तबाह होते हुए देखी तो उसको ये शरारत सूझी कि फाउंडर भी मजहबी फिरकावारियत फैला रहे हैं, जैसे आजकल हुकूमतें कहती हैं, और मौलाना रहमतुल्ला भी फिरकावारियत फैला रहे हैं, लिहाजा इन दोनों को सजाए मौत दी जाती है। उस जमाने में सजाए मौत ऐसी थी जैसे फलस्तीन में आज मुसलमान कट रहे हैं और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। 1857 3 साल पहले गुजर चुका था और लाखों करोड़ों इंसानों को वो कत्ल कर चुके थे। ये जो आज हमें दर्स देते हैं और बार बार हमें कहते हैं कि हुकूक इंसानी और तरीका और फलाना ड्रामा ये वो, ये सब धोखा है। ये जो सब पूरे दुनिया के ठेकेदार ब्रिटिशर बनते हैं, इन ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए बर्रे सगीर में जो इंसान कत्ल किए हैं, जो कत्लेआम किया है, तारीख आप उठा के देख लें, हैवानात भी इस किस्म का कत्लेआम नहीं करते हैं जिस किस्म का कत्लेआम इन्होंने किया है। तो अंग्रेज की तरफ से ये फैसला हो गया कि मौलाना को भी फांसी देनी है और फाउंडर जो उन्होंने तैयार किया था उसने भी अपना काम सही से नहीं किया, लिहाजा उसको भी फांसी देनी है। फाउंडर को जब ये बात मालूम हुई वो वहां से भाग गया और रोपोश होकर चलते 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 सल्तनत उस्मानिया के जो कैपिटल था कुस्तुनतुनिया, आजकल इस्तांबुल उसे कहते हैं, वहां पे वो पहुंच गया और मुसलमानों के उस्मानी खलीफा से उसने ये बात कही कि मैं वो पादरी हूं कि हिंदुस्तान के तमाम मजाहिब के लोग मुझसे हार चुके हैं और अब मैं आपकी सल्तनत में आया हूं, आप अपने उलमा से कहिए, आप अपने मुफ्तियों से कहिए, आप अपने मजहबी माहिरीन से कहिए कि फाउंडर आ चुका है और फाउंडर से मुकाबले की तैयारी आप लोग करें। जब उस्मानी खलीफा को ये बात पता लगी, उसने अपनी जो मजहबी कमेटी थी उसको तलब किया और उनसे कहा कि एक पादरी आया है और वो पूरे आलम इस्लाम को चैलेंज करता है और कहता है कि हिंदुस्तान के उलमा को मैं हरा चुका हूं और अब आप लोगों का नंबर है, यहां के उलमा को कहिए कि मेरे साथ मुनाजरा करने के लिए आ जाएं, तैयारी करें। तो वहां के उलमा ने इनको पहचान तो लिया कि ये वही आदमी है जो हिंदुस्तान में इलाहाबाद के मेला खुदाशनासी से भाग गया था और मौलाना रहमतुल्ला किरानवी ने इसको वहां पे शिकस्त दे दी थी। उन उलमा ने हिंदुस्तान के वली वही हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह से राब्ता किया कि इस्तांबुल में फाउंडर पहुंच गया है और यहां के मुसलमानों को तंग कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। हजरत हाजी साहब ने वो फरमाया कि आदमी हमारे पास मौजूद है लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अंग्रेज की गिरफ्तारी से बचाना उसकी जिम्मेदारी आपकी है और दूसरी बात यह है कि फाउंडर को उसका नाम हरगिज नहीं बताना है, अगर उसको पता लग गया तो वो वहां से भी भाग जाएगा। हजरत मौलाना रहमतुल्ला किरानवी हज के लिए गए, उन्होंने हज किया, फिर वहां से अलकुदस की तरफ गए, ज़ियारात की और सफर करते करते हुलिया बदल कर, भेस बदल कर बिलाखिर वहां पे पहुंच गए। सल्तनत उस्मानिया के दरबार में महफिल लगी और एक तरफ फाउंडर अपने खास तरीके से मौजूद था और दूसरी तरफ से उनको कहा गया कि आपके मुकाबला करने के लिए हमारे आलिम मौजूद हैं। जब फाउंडर ने कहा कि कौन से आलिम हैं उनको आगे लाइए तो देखा कि वही इलाहाबाद के मेले में जो मौली साहब मौजूद थे वही वाले यहां भी मौजूद। फाउंडर ने कहा कि मुझे हाजत है, मुझे बैतुल खला जाने की जरूरत, और उस जमाने में महल्लात के जो बैतुल खला होते थे वो दरिया के किनारे बने हुए होते थे। वो बैतुल खला जो वहां फाउंडर वो गया है आज तक वो बैतुल खला से वापस निकला ही नहीं है, बल्कि उसने वहां से दरिया में छलांग लगा दी और बेइज्जती से बचने के लिए उसने अपने जान ही ले ली। ये हमारे उलमा हैं और ये हमारे बड़े हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर डंके की चोट पे दीन इस्लाम की हक्कानियत बयान भी की है और उसका दिफा भी भरपूर तरीके से किया है। और फिर हजरत मौलाना रहमतुल्ला केरानवी ने ये अपनी तमाम जो उलूम थे, जिस तरीके से उन्होंने फाउंडर को शिकस्त दी थी, वो एक किताब में जमा कर ली है और इस किताब का नाम इजहारुल हक, ये इस नाम से वो मारूफ है और उसके उर्दू तर्जुमे भी हो चुके हैं। आप हजरात को अल्लाह ताला तौफीक दें तो इस किताब का पता करें और इस किताब को एक नजर देखिए। और हमारे मोहतरम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी मुद्दज़िल्लुल आली ने जो इस्लाम से बाइबल तक किताब लिखी है, उस किताब के अंदर जो असलुल असल मतन है वो यही है। लिहाजा वो किताब भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसका फायदा भी अल्लाह के फजल से आपके लिए यकीनी है। तो सूरह आल इमरान अहले किताब के रद में नाजिल हुई है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के 70 पादरियों को एक एक चीज का जवाब दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत है उस उम्मत में अल्लाह ताला ने ऐसे हीरे और ऐसे याकूत पैदा कर दिए थे जो बाद में भी इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से पूरा करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, अल्लाह ताला वो जात है जिन्होंने आप पर कुरान करीम नाजिल कर दिया है। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, कुरान की कुछ आयतें मुहकमात हैं, व उखरु मुतशाबिहात, और कुरान की जो दूसरी आयतें हैं वो मुतशाबिहात हैं। पहले ये समझ लीजिए कि मुहकमात किसे कहते हैं और मुतशाबिहात का मतलब क्या है। मुतशाबिहात ये ऐसी आयतें हैं कि इन आयतों का असल मतलब किसी मुसलमान को मालूम नहीं है, बल्कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ से ये आयतें हमारे लिए एक आजमाइश भी है और हमारी कम इल्मी पर दलील भी है। कोई शख्स ये कहे कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, मेरी नॉलेज सबसे ज्यादा है, मैं पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं, कोई मुसलमान ऐसा न कहे, मुसलमानों को इंसानी दायरे के अंदर रखने के लिए और मुसलमानों के अंदर अल्लाह और रसूल के हुक्म को मानने की सलाहियत पैदा करने के लिए कुरान करीम में ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं कि उन आयतों का जो असल मतलब है वो किसी को मालूम ही नहीं है, इनको मुतशाबिहात कहा जाता है। और दीन का जो असलुल असल है वो ये आयतें नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इस उम्मत इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी है कि जो दीन का असलुल असल है वो आयतें हैं जिनके मानी और जिनके मतालिब और जिनकी तशरीह बिल्कुल वाज़े हो चुकी है और जिसमें हमारे अकीदे का बयान मौजूद है, जिन आयतों में हमारी इबादत का बयान मौजूद है, जिन आयतों में हमारी इस्लाह का बयान मौजूद है, ये आयतें मुहकमात कहलाती हैं, ये आयतें मुतशाबिहात नहीं हैं। इसलिए हमें मुतशाबिहात का जानना जरूरी नहीं है, ना हमारा अकीदा मुतशाबिहात के ऊपर मौकूफ है, ना हमारा इबादत मुतशाबिहात के ऊपर मौकूफ है, ना हमारी जिंदगी के दीगर जो احکام اور مسائل ہیں وہ متشابہات پر موقوف نہیں ہیں، بلکہ وہ آیتیں جن سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، جن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے نبی اور رسول ہونا ثابت ہوتا ہے، اور جن آیتوں سے قیامت کا قائم ہونا ثابت ہوتا ہے، جن آیتوں سے فرشتے اللہ کی مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے، جن آیات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آنے والے انبیاء اور مرسلین کی سچائی ثابت ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری آیتیں محکمات میں سے ہیں، متشابہات میں سے نہیں. اور نصارہ نے جو سب سے بڑی شرارت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انجیل کے اندر جو محکمات موجود تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے پیغمبر کی بات سنو، شراب سے بچو، خنزیر سے بچو، یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی. اور جو انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ نے اللہ کو اب کہا تھا، یا اللہ نے یا بنیا ان کو بیٹا کہا تھا، اس کے پیچھے وہ لگ گئے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں جگہ پہ یہ بات موجود ہے. اور صرف نصرانی ایسے نہیں تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کریم کے اندر لفظ نور موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور نور تو بشر نہیں ہوتا ہے، نور تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، لہذا پیغمبر نور ہے، پیغمبر بشر نہیں ہے. اور دوسری طرف واضح آیت موجود ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بندہ ہوں. یہ آیت ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ محکمات میں سے ہے، اور وہ آیت جو متشابہات میں سے ہے اس کے پیچھے وہ پڑے رہتے. اور ایک اور فرقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ضلالت پر متفق نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پانچ آدمی مسلمان رہ گئے تھے، اس کے علاوہ ابو بکر بھی کافر ہو گئے تھے، عمر بھی کافر ہو گئے تھے، اور عثمان بھی کافر ہو گئے تھے، فلاں بھی کافر ہو گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ متشابہات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محکمات والی بات ان کو سمجھ آتی ہی نہیں. یاد رکھیے گا، بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو دین میں متشابہات کے پیچھے لگے ہوں اور متشابہات کی کھوج میں مشغول ہوں، تو ایسے لوگوں سے دور رہو، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں تین باتیں موجود ہیں، ابن کثیر میں حدیث موجود ہے اور طبرانی کا حوالہ وہاں پہ موجود ہے، کہ مجھے اپنی امت کو تین چیزوں کا ڈر ہے. پہلی چیز کہ میری امت میں مال کی کثرت ہو جائے گی، اور مال کی کثرت کی وجہ سے تم لوگ آپس میں لڑو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی فکر تھی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ لڑتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ لڑتا ہے، بیٹی باپ کے ساتھ لڑتی ہے، گلی گلی گھر گھر میں اختلافات مال کی وجہ سے موجود، اور یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے. جب آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے اور ساری کی ساری تما امیدیں اور ہماری مقصد مال بن جاتا ہے، تو پھر ہم مال کے لیے لڑتے بھی ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں. آپ خود بتائیے، یہ جو مسلمان راستوں میں لوگوں کو بندوق کے زور پر لوٹ رہے ہیں، اگر اسکول میں आप इनको ये हदीसें पढ़ा देते और कुरान की ये आयतें पढ़ा देते और इनको ये बात समझा देते तो इस किस्म का अमल ये हरगिज नहीं करते। जहालत के अंधेरों में कौम को डाला हुआ है और एक टूटी फूटी सी बकवास किस्म की अजीब व गरीब तालीम है, कहते हैं ये पढ़ो। वो तालीम किसकी है? उसी की है जिसने फाउंडर को तैयार किया था। तो उस जमाने में भी फाउंडर तैयार होते थे और इस जमाने में भी जो बहुत ही आला स्कूल में पढ़ता है, आला कॉलेज में पढ़ता है, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, खुद ब खुद ये बात आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा वो दीन का मुनकिर भी होता है, अल्लाह और रसूल से उसकी दुश्मनी भी होती है। उसकी वजह यही है कि हमने अपनी बुनियाद ऐसी गलत डाल दी है कि जब तक इस बुनियाद की इस्लाह नहीं होगी उसके ऊपर आप दीवार बनाते रहें, वो दीवार आसमान तक भी चली जाएगी, लेकिन बुनियाद टेढ़ी है तो दीवार भी टेढ़ी। तो मुतशाबहात के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। मुतशाबहात का मानना जरूरी है, मुतशाबहात का जानना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर सूरह आल इमरान के पहली आयत अलिफ लाम मीम, एक मुसलमान कहे कि इसका मतलब क्या है, मैं तो इसको जान के ही रहूंगा, ये गलत है, ये अपनी हद से तजावुज कर रहा है और अपने इख्तियारात से आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ताला नहीं चाहते हैं कि इसका मतलब और इसके माना हमें मालूम हो, इसकी जरूरत नहीं। अब आप खुद बताइए कि ऐसी सूरत में इसका जानना नेकी है या जो भी है अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह का हर हुक्म हमारे लिए वाजिब है, हमारी सराखों पे तस्लीम है, ये कहना जरूरी। ये सारे के सारे जो फिरके बने और जितने भी इख्तलाफात हुए हैं इसकी कहीं ना कहीं बुनियाद वो यही होती है कि वो किसी मुतशाबह बात के पीछे पड़ जाते हैं और फिर लोगों को कहते हैं कि देखो फलां ने ये कहा है, फलां ने ये कहा है। आजकल YouTube पे फितना इंजीनियर जो चल रहा है या उसके साथी जो चल रहे हैं वो उनकी पूरी की पूरी दुकान मुतशाबहात पे ही चलती है। वो ये चाहते हैं कि इस्लाम से लोगों को ऐसा बदजन कर दें कि इस्लाम में तो फिरकों के अलावा कोई चीज है ही नहीं और इस्लाम में तो कोई सही बंदा है ही नहीं, इस्लाम के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफात पढ़ाए जाते हैं, इख्तलाफात के अलावा तो इसमें कोई काम की चीज है ही नहीं। ये एक खास सोच है और इस सोच के और नाम क्या लेते हैं कि हम इख्तलाफात को खत्म करना चाहते हैं, हालांकि वो सारा दिन वो जितना इख्तलाफात को प्रमोट करते हैं उनसे ज्यादा इख्तलाफात हमें मालूम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक खास सोच है और उस सोच को लाके मुसलमानों के ऊपर बिठा दिया गया है। न वो अपने बाप को छोड़ता है, न अपने उस्ताद को छोड़ता है, न अपने शेख को छोड़ता है, न अपने से बड़े को छोड़ता है, न अपने से बुजुर्ग को छोड़ता है। इस बदतमीजी और इस बेरगबती का मकसद क्या है? उसका मकसद असल ये है कि मुतशाबहात वाली बातों में मुसलमानों को ऐसा गुम कर दिया जाए और ऐसा आगे पीछे कर दिया जाए कि मुसलमान कहें कि हमारे दीन में तो कोई काम की चीज है ही नहीं। और जो उलमाए हक हैं, जो वाकयातन अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं? पिछली मजलिस में भी ये बात हो चुकी थी। हर वो उम्मती जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सही मानता है और सहाबाए किराम सब के सब अव्वल से आखिर ए टू जेड किसी एक का भी उसमें इस्तिस्ना की इजाजत नहीं। सीमा हम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कुरान करीम में किसी किस्म का इस्तिस्ना मौजूद नहीं है तो आप इस्तिस्ना करने वाले कौन है? आपको ये इख्तियार किसने दिया है? किसी ने भी नहीं। तो अहले सुन्नत जो सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं, और अहले सुन्नत जो हजरत अबू बकर से लेकर हजरत अनस जैसे छोटे सहाबी तक, सारे के सारे सहाबा को असहाबी कन नुजूम बिअय्यह मिक्तदैतुम इहतदैतुम। हम किसी ईरानी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है वो हमारे लिए काफी है। और आपने, आप ऐसे कामिल शेख थे, आप ऐसे जबरदस्त उस्ताद थे कि आपने पूरे जमाने को चैलेंज कर दिया था कि मेरे सहाबा में से हर हर सहाबी वो बरहक है, वो ठीक है, और तुम जिसके साथ भी चलोगे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे देंगे। और उसके बाद फिर जो ताबईन हैं, जो आइम्मा हैं, आप जानते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे फिका में इमाम हैं। उनको अबू हनीफा क्यों कहते थे? इसलिए कि उस जमाने में करामिया फिरका मौजूद था, जहमिया फिरका मौजूद था, जबरिया फिरका मौजूद था, मोतजिला फिरका मौजूद था, ला कदरिया फिरका मौजूद था, किस्म किस्म के फिरके, हर गली के अंदर एक फिरका मौजूद था। और हजरत इमाम साहब ने इन तमाम फिरकों का अकेले मर्द मुजाहिद ने मुकाबला किया, और जो सही दीन था वो वाजह कर दिया, और फिरकों की साजिशों को कामयाब होने नहीं दिया है। और इसी वजह से आपको अबू हनीफा कहते हैं, यानी जो यकसू होकर दीन पर अमल करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान करीम के अंदर मुतशाबहात मौजूद हैं, लेकिन इन मुतशाबहात का मतलब क्या है हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि न इन मुतशाबहात पे हमारा अकीदा मौकूफ है, न इन मुतशाबहात पे हमारी इबादत मौकूफ है, न इन मुतशाबहात के बारे में कब्र में हमसे पूछा जाएगा, और न ही इन मुतशाबहात के बारे में मैदान हशर में हमसे पूछा जाएगा, हरगिज नहीं। बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया किराम के मौजजात होते हैं कि कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, और उनको सीक्रेट ही रखा जाता है, और हर एक को बताना उसके लिए जरूरी नहीं है। आप किसी कंपनी के मालिक बनते हैं, किसी कारखाने के, किसी जगह के मालिक बनते हैं, तो आपके हर हर मजदूर को उस जगह की सारी बातें मालूम होना ये गलत है, ये तबाही है। बल्कि कुछ बातें जो बराए जरूरत उसको जानना जरूरी हैं, वो आप उसको बता देते हैं, उससे ज्यादा अगर वो चीजों में घुसता है तो मालिक को गुस्सा आता है, मालिक नाराज होता है। क्यों होता है? इसलिए कि मजदूर अपने हद से तजावुज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये बात ठीक नहीं है। तो अपनी फैक्ट्री में और अपनी कंपनी में अपने मजदूर को हद से आगे बढ़ना आपको बुरा लगता है, और मुसलमान जो है वो हर चीज को जानना उसके लिए जरूरी है, ये बात आपके नजदीक ठीक है? तो ये तो अजीब सी बात हो गई। बाओ का तजुर्रो व बाइला तजुर्रो, अरबी में कहते हैं कि जो आपका गम है वो गम है और हमारा गम जो है वो गम ही नहीं है, ये बात तो गलत है। बल्कि कुरान क्या कहता है, अब कुरान की तालीम सुन लीजिए। फअम्मल्लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो लोग जिनके दिल टेढ़े हैं, जिनके दिलों में शरारत है, जिनके दिलों में शैतान बस चुका है, फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, वो हमेशा तशाबुह के पीछे लगे रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि नहीं जी, फलां जगह पे तो ये हो गया था, फलां लड़ाई में तो हजरत अली सही थे और हजरत उस्मान गलत थे, और फलां लड़ाई में हजरत उमर गलत थे, फलाने सही थे। अरे भाई, तुम्हारा इन चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम कौन होते हो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात के दरमियान में जज बन रहे हो, फैसला कर रहे हो? हरगिज नहीं। ये मुतशाबहात में से है, अल्लाह ताला के फैसले हैं, और हर चीज अल्लाह की तरफ से जो हमें और आपको बताई जा रही है उसका जानना जरूरी नहीं है, उसका मानना ये जरूरी। कुरान कहता है फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो लोग जिनके दिलों में कजी मौजूद है, टेढ़ मौजूद है। फयत्तबिउना, वो हमेशा इत्तेबा करते हैं, पीछे लगे रहते हैं। मा तशाबह मिन्हु, उन चीजों के जो मुतशाबहात में से होती हैं। क्यों? इब्तिगा अल्फितनते वब्तिगा तअवीले, नंबर एक, उनको दीन में फितना पैदा करना होता है, और फितना पैदा करने के लिए मुतशाबहात से बेहतर चीज कोई है ही नहीं। भाई जिस चीज का मतलब मुझे भी नहीं पता और जिस चीज का मतलब आपको भी नहीं पता, तो तीसरा आदमी के कहता है कि चलो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। अपना हमें पता है ना इसको पता है, इसलिए वो अपनी दुकान की खोल के बैठ जाते हैं और कहते हैं जी आइए हम बताते हैं। और मुसलमान मासूम है, नई नई बातें सुनते हैं, खुश होते हैं कि वाह वाह ये वाले मौलवी साहब तो कोई नई बात कर रहे हैं। आजकल जो नई बात करे वो कामयाब है, और पुराना दीन है, पुरानी बातें हैं, वो तो मजा ही नहीं आता उनको। बात यह है, इसलिए अपने रविश को ठीक करना जरूरी है। दुनिया की चीजों में नत नई चीजें अच्छी हैं, लेकिन दीन के अंदर नत नई चीजें ये महमूद नहीं है, बल्कि दीन के अंदर जो नत नई चीजें आती हैं उसे तो बिदत कहते हैं, और बिदत का अंजाम जहन्नम है, याद रखिएगा। सही हदीस में यह बात मौजूद है। वब्तिगा तावील, और दीन में तावीलात करते हैं। नहीं जी कताल का मतलब ये नहीं है, और जिहाद का मतलब ये नहीं है, और कुरान में जो फलां बात कही गई है इसका मतलब ये नहीं है, पर्दे का मतलब ये नहीं है जिस तरह आजकल उलमा कह रहे हैं, और नमाज का मतलब ये नहीं है। ये सब क्या है? तावीलात। हम कोई अपने घर से थोड़ी लाते हैं, हमारे पास तो जो कुरान और हदीस की तालीमात मौजूद हैं उसको देख लेते हैं और आगे पैगाम बता देते हैं। लेकिन जो तावीलात करते हैं और जो इस किस्म की तावीलात करते हैं जो न मुतशाबा से साबित होती हैं न महकमात से साबित होती हैं, उस किस्म की तावीलात की दीन में गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। फिर मुतशाबहात का करना क्या है? उसूल नोट कर लीजिए। उलमा कहते हैं कि वो मुतशाबहात के जिसके अंदर मुहकमात की खिलाफ वर्जी बजाहिर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कैसे हैं? अब कुरान करीम में अल्लाह ताला के बारे में आता है कि तुम लोग अल्लाह को जानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला का तसव्वुर और अल्लाह ताला की हकीकत को अपनी समझ में लाने की सलाहियत ही हमारे अंदर मौजूद नहीं है। और फिर आगे जाके कुरान कहता है कि वल वस्समावतु मतवियातुम बियमीनिही, आसमान अल्लाह ताला के सीधे हाथ में मौजूद है। तो क्या अल्लाह ताला हमारी तरह है कि उनके दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, कान है, नाक है? हरगिज नहीं। जिसने ये अकीदा रखा वो काफिर है, याद रखिएगा। तो फिर मतवियातुम बियमीनिही का क्या मतलब है? जो अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं उस तरह जो आसमान और जमीन है अल्लाह ताला की दस्त कुदरत में मौजूद है। इसी तरह अल्लाह ताला के लिए जिस्म का साबित करना ही जायज नहीं है। जिस्म के साबित करने के लिए मटेरियल का होना जरूरी है, और मटेरियल के लिए मखलूक का होना जरूरी है। अब ये बात निकल पड़ी है तो ये बात एक दफा फिर नोट कर लीजिए कि आपने शायद कहीं पे ये बात सुनी हो कि जी ये जो अहले हक उलमाए देवबंद हैं ये कहते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक ये अल्लाह ताला के अर्श से ज्यादा अफजल है। तलबा ने ये बात सुनी होगी और फिर कहते हैं कि ओह हो कितनी बुरी बात है, पैगंबर को आगे कर दिया और अल्लाह को पीछे कर दिया। यह है धोखादगी। मुतशाबहात में कैसे धोखा होता है यह बात समझ लीजिए। बात यह नहीं है, बात यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, और जो अल्लाह का बंदा है उसका जिस्म होता है या नहीं होता? होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में आराम फरमा रहे हैं लेटे हुए, तो कब्र की मिट्टी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मस कर रहा है, टच कर रहा है या नहीं कर रहा है? और अल्लाह ताला कहाँ है? अर्श पे, मस्तवा अलल अर्श। कुरान कहता है अल्लाह ताला ने अपनी अल्लाह खुदाई कायम की और अल्लाह ताला उसके बाद अर्श पर बैठ गए। अल्लाह का जिस्म मौजूद है तो अल्लाह का जिस्म अर्श से टच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो अब बताइए, जिस मिट्टी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म टच कर रहा हो वो ज्यादा अफजल है या उस अर्श से जिस पे अल्लाह का जिस्म टच करता ही नहीं है? बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अर्श भी मखलूक है और कब्र की मिट्टी भी मखलूक है, और जो मखलूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से सुबह शाम मस हो रही है वो ज्यादा अफजल है या जो मखलूक अल्लाह ताला के जिस्म से मस होती ही नहीं है? ये बात है। इसको घुमाते हैं और ऐसे कहते हैं कि देखो देखो मौलवियों ने कितनी गलत बात कर दी। गलत बात नहीं कर दी, आप जाहिल हैं, आपको इस बात का मतलब पता ही नहीं। बहरहाल ये तो मैंने एक मिसाल के तौर पे आपको बताया है कि ये जितने भी यूट्यूबर एंड कंपनी और फिरके और सारे किस्म के मजाहिब, ये सारी जो इनकी दुकान चलती है वो इसी पे चलती है, इब्तिगा अल फितना व इब्तिगा तावील। या तो ये कोई फितना हाईलाइट करते हैं या फिर किसी तावील के पीछे पड़ जाते हैं, और तावील मैंने आपको बात बता दी। वमा यालम तावीलहु इल्लल्लाह, मुहकमात आयत मौजूद है। इसकी तावील नहीं जानता मगर कौन? अल्लाह ताला जानते हैं। जब अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि इसके अंदर ज्यादा खोजने की और कुरेदने की जरूरत नहीं है, तो फिर इन चीजों में ज्यादा घुसने की जरूरत हमें है हरगिज नहीं, बल्कि ये मुतशाबहात में से है। अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की उंगलियां हैं, अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह का अर्श है, अल्लाह ताला मुसलमान को करीब करता है, उसके कान में बात करता है। ये सब क्या है? ये जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं वैसा है, हमें इसके बारे में मजीद खोदने की जरूरत नहीं है। वर्रासिखून फिल इल्म, और वो लोग जो अपने इल्म में पक्के हैं, आप उनको लाखों रुपया दे दें लेकिन वो अपना अकीदा छोड़ते नहीं हैं, आप उनको किस्म किस्म की सजाएं दे दें लेकिन वो अपना अकीदा छोड़ते नहीं है, आप मदारिस पे किस्म किस्म की पाबंदियां लगाते हैं और आप मदारिस की आमदनी को टटोल टटोल के चेक करते हैं कि कहां से टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, शर्म तुमको मगर नहीं आती, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने इल्म के ऊपर मजबूती के साथ कायम है। वो क्या कहते हैं? असल मजहब क्या है? यकूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, सारा का सारा कुरानी करीम अल्लाह की तरफ से है और सारे के सारे कुरानी करीम पर हम ईमान लाते हैं। ख्वाह हमें समझ में आए या हमें समझ में न आता हो, लेकिन इस बात में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि ये जो किताब है ये अल्लाह की किताब है और इसमें जो कुछ मौजूद है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल कर दिया गया। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अल्बाब, और अकल की बात नहीं समझते मगर वो जिनको अल्लाह ताला ने अकल दी होती है। दोबारा देखिएगा, इल्म का जिक्र आया पिछली मजलिस में, अगर आपको याद हो मैंने कहा था जहां इल्म आता है वहां अल्लाह ताला उसके साथ अकल वालों का जिक्र जरूर करते हैं। आप बिदतियों को जाके देखें, राफिजियों को जाके देखें, जो तुम कर रहे हो भाई इसकी क्या वजह है? कोई अकल में ये बात तुम्हारे आती है? नहीं जी नहीं, अकल में आए या ना आए, आप गुस्ताखी कर रहे हैं। और हमारे बड़े ये करते थे, मुशरिकीन भी ये कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप तो हमें अपने बड़ों के रास्तों से हटा रहे हैं। बात ये नहीं है, अल्लाह ताला ने अकल दी है और उस अकल में ये सलाहियत मौजूद है कि वो हक और बातिल का इम्तियाज कर सके, और ये सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है। अब ये आपका इख्तियार है कि आप जन्नत जाना चाहते हैं या आप शैतान का साथी बन के जहन्नम जाना चाहते हैं। इतना जो इख्तियार है अल्लाह ताला ने बंदों को दे दिया है, और जो फैसला है वो अल्लाह का है। यही वजह है कि कहते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देता है और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत नहीं देता है। एक शख्स के मुकद्दर में हिदायत नहीं है, पूरे दुनिया के मुसलमान मिलकर
اس کو تبلیغ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں لیکن اللہ کے ہاں فیصلہ نہیں ہے تو ہدایت نہیں. تو بہرحال کل من عند ربنا, یہ ساری کے سارے جو قرآن و حدیث ہے اور سنت ہے اور صحابہ ہیں تابعین ہیں ائمہ ہیں, سب کے سب ہمارے رب کی تعلیمات ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں سمجھتے عقل کی بات مگر وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہوتی ہے. عقل سلیم کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے. جو شخص دن رات زنا کرتا ہو, جو شخص شراب پیتا ہو, جو شخص دن رات شیطان کو خوش کرتا ہو, اس کے دل و دماغ پہ زن آ جاتا ہے, وہ عقل سلیم نہیں ہے, اس پہ محنت کی ضرورت زیادہ ہے. اور جو شخص فطری طور پہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہو اور اس کے اپنے رب کی تلاش ہو, اس کو آپ دو آیتیں پڑھ کے سنا دیجئے, اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل پہ بھی محنت کی تھی, شیبہ پہ بھی کی تھی, عتبہ پہ بھی کی تھی, امیہ پہ بھی کی تھی, لیکن ان پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا, اللہ کے ہاں سے فیصلہ نہیں تھا. ہم کہیں کہ جی اللہ کے ہاں سے فیصلہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی کیا ضرورت تھی؟ سوال تو بنتا ہے نا. تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے لیکن جو حتمی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ ہی وہ کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, یہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے والوں میں سے بنائیے, ہمیں جنتیوں میں سے بنائیے, اس کی وجہ یہی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا, دیکھیے ساری بات سمجھ میں آ گئی, اب استقامت کی ضرورت ہے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ایمان اللہ نے آپ کو نصیب کر دیا ہے, دنیا رہے یا نہ رہے آپ کا ایمان مضبوط ہو. جو عقیدہ اللہ نے آپ کو جنت کا دکھا دیا ہے, کوئی آپ کو زندہ چھوڑے یا کوئی آپ کی جان کے در پہ ہو لیکن عقیدے میں ایک رتی بھر بھی فرق نہ آتا ہو, یہ استقامت ہے. اور استقامت صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے گا, بعد از ہدیتنا, بعد اس کے کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے چکے ہیں. وہب لنا من لدنک رحمۃ, اور اے اللہ ہمیں اپنے خاص فضل و احسان سے رحمت دے دیجئے, دین دے دیجئے, سنت دے دیجئے, اتباع دے دیجئے, اخلاص دے دیجئے, مسجد میں وقت گزارنا نصیب کر دیجئے, قرآن و سنت کی خدمت کرنا نصیب کر دیجئے. یہ سب رحمتیں, اور کیا رحمت ہوگی؟ دکان کھول کے بیٹھ جائیں, فیکٹری بیٹھ جائیں, وہ رحمت نہیں ہے, وہ تو دنیا ہے. اور رحمت کا تعلق آخرت سے ہے, دنیا سے نہیں ہے, یہ بات یاد رہی. انک انت الوہاب, اور بے شک آپ ہی جس کو جو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. ربنا انک جامع الناس, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک دن آپ تمام انسانوں کو جمع کریں گے. لیوم, ایسے دن میں, لا ریب فیہ, جس میں رتی بھر بھی کوئی شک نہیں ہے. قیامت کے بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے پیغمبر کی بات مانو تو میں جنت دوں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قبر میں سوال جواب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حشر میں نام اعمال کی تقسیم ہوگی. اس لیے ان تمام وعدوں پر ہمارا ایمان ہے, اور ان تمام وعدوں میں کامیابی ہونے کے لیے ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور جستجو بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دیں. جو مرحومین ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. اور ہمارے جامعہ عربیہ احسن العلوم کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر قسم کے پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن سے، حسد سے، دشمنی سے، نظر سے، اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی، ہمارے آپ کے آل و اولاد کی، ہمارے آپ کے تمام سلسلوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، ان کی آزمائش مختصر کر دیں، جو شہداء ہو چکے ہیں، بہت بڑا ظلم ان پہ ہوا ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں ان کے لیے آسانیاں کر دیں، اور جو وہاں پہ پریشان ہیں، زخمی ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو غیرت دیں، مسلمانوں کو توفیق دیں، ہمارے حکمرانوں کو خواب خرگوش سے اٹھنے کی توفیق دیں، اور وہاں پہ اپنے امداد اور اپنے بس کے مطابق ان کی مدد کرنے کی توفیق دیں، اور اے اللہ ہم کیا مدد کریں گے، ہم اپنی مدد بھی پوری طرح کر سکتے نہیں، اے اللہ آپ کی طرف سے ہی نصرت نازل ہوگی، اور اے اللہ آپ ہی کرم فرمائیں گے، اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لیجئے، ہمارے ملک کی حفاظت کیجئے، ہمارے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب کیجئے، اور متشابہات اور فرقہ پرستی اور قسم قسم کے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت کیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.